ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार नौवीं बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। आज मुंबई में तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। स्थायी जमा सुविधा एसटीएफ दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर और बैंक दर 6.75% पर बनी रहेंगी। बैठक में 6 में से 4 सदस्यों के बहुमत से यह निर्णय लिया गया ताकि मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुरूप बनी रहे। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6, 7 और 8 अगस्त को मुंबई में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने आज न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के ताकीना वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू न्यूजीलैंड की 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह राजधानी वेलिंगटन पहुंची। न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो की उपस्थिति में वेलिंगटन के गवर्नमेंट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू गवर्नमेंट हाउस में न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधानमंत्री सह विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति ने वेलिंगटन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। लोकसभा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को सदन में रखेंगे। ये बिल जमीन के पंजीकरण और सर्वेक्षण से जुड़े मामलों में राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकारों से जुड़ा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सरकार को उन तमाम संस्थाओं से बात करनी चाहिए जो इस विधेयक से सीधा प्रभावित होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सभी विपक्षी दलों से सुझाव भी लेने चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सदन में इस विधेयक का विरोध करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सुप्रिय सुले ने मांग की कि इस बिल को जरूरी बदलावों और सुझावों के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि यह कानून उन अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए लाया गया है जिन्हें प्रताड़ित किया गया। गरीब अल्पसंख्यकों की कई शिकायतें थीं कि उनकी संपत्ति वक्फ बोर्डो ने ले ली है। विपक्षी दलों के सांसदों ने प्याज और आलू की महंगाई को लेकर आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की भी मांग की। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आज रात शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने कहा कि करीब 15 लोग अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में शपथ ले सकते हैं। उन्होंने देश में 3-4 दिन में हालात सामान्य होने की संभावना व्यक्त की। इस बीच सेना ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि अगर किसी को भी तोड़फोड़, हिंसा और हत्या की धमकी मिले तो वे निकटतम सैन्य शिविर में संपर्क कर सकते हैं। ब्रिटेन और मिस्र ने अपनी एयरलाइनों को ईरान और लेबनान के हवाई क्षेत्र का उपयोग न करने का परामर्श जारी किया है। यह परामर्श आतंकी गुट हमास और हिजबुल्ला के कई आतंकियों की हत्या के कारण क्षेत्र में हिंसा की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अमरीका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने तल अवीव के लिए अपनी सभी उड़ानें 31 जुलाई से स्थगित कर रखी हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का आज 80 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। वे गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। पेरिस ओलंपिक्स में आज रात मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अपना खिताब बरकरार रखने उतरेंगे। वहीं पुरुष हॉकी टीम आज शाम कांस्य पदक के लिए स्पेन के साथ खेलेगी। पुरुषों की कुश्ती में भारत के एकमात्र पहलवान अमन सहरावत आज दोपहर बाद 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल स्पर्धा में भाग लेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।